تفسیر، ترجمہ آپ نے جو ہے وہ لکھ لیا، اور اس کے بعد تلاوت بھی آپ نے سنی، اور ایسا کوئی نیا لفظ نہیں ہے جس کو روٹ ورڈ اور مشکل الفاظ کے طور پر آپ کے سامنے رکھا جاتا. تو اب دیکھتے ہیں کہ تلاوت کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ کیا حکم دیا ہے، کون سی باتیں میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور اگر آپ جو ہیں ان آیات پر غور کریں تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ایک خاص بات بتا رہے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ دنیا میں دو فریقوں کا جو مکالمہ ہے نا، وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. اور دو فریق کون سے ہیں؟ ایک فریق ہے جو مطیع ہے، اطاعت کرنے والا ہے، کمزور قسم کے لوگ ہیں، اور دوسرا جو فریق ہے مطاع، جس کی اطاعت کی جاتی ہے. تو جو کمزور قسم کے لوگ ہیں وہ کون؟ جیسے آپ اس کو عوام کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو غریب لوگ کہہ سکتے ہیں، آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ مطیع کہہ سکتے ہیں جو دوسروں کا کہنا مانتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں. اور پیچھے چلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کبھی پیئر پریشر ہوتا ہے، کبھی ان سے کوئی مرعوب ہوتے ہیں، کبھی ان سے کوئی امید ہوتی ہے، کبھی کسی کی جو ہے وہ دولت کی وجہ سے، کسی کی قوت کی وجہ سے، کسی کی کرسی کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کسی کی اطاعت کی جاتی ہے. تو دو گروہ ہیں، ایک اطاعت کرنے والا اور دوسرا وہ جن کی دنیا میں اطاعت کی جاتی رہی. یہ ہر دور میں رہا، ہر نبی نے جب دعوت پیش کی تو سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ سردار قسم کے تھے اور جیسے سیاسی لیڈر ہیں چودھری قسم کے، جس میں مولوی، پروفیسر، ٹیچر، دولت مند، مترفین، کچھ بھی لوگ آ سکتے ہیں، جس کا بھی کہنا مانا جاتا ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں ماننے والے. تو مکہ میں بھی کچھ سردار تھے اور کچھ ان کا کہنا ماننے والے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ دو گروہوں میں تقسیم ہے. ایک پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں آنکھیں بند کر کے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جو مجھے کام کہہ رہا ہے یا کوئی جو بات کہہ رہا ہے وہ بات کہنے والا کون ہے، اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جو ہے وہ غلط راستہ بتا رہا ہے، غلط ڈائریکشن دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. بڑا خوبصورت انداز ہے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا. تو کفر کرنے والوں نے، انکار کرنے والوں نے کیا کہا؟ لن نؤمنا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ما نہیں آیا، لا نہیں آیا، اس کی بجائے لن آیا ہے. لن جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، اور عام طور پہ فعل مضارع جو ہے وہ دو معنی دیتا ہے، حاضر حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. اور جب لن داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں کہ ہرگز ہم نہیں مانیں گے، ہرگز ہم اس کو نہیں مانتے. لن نومنا تاکید کے لیے کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ ہرگز ہم نہیں مانتے بہذا، اس کو. اور ہذا یہ تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے، جیسے کوئی بڑی سی چیز کوئی آپ کے سامنے لا کر پیش کرے، آپ کو دے، اور آپ کہے کہ ہذا ہذا ہی یہ. بعض اوقات کوئی انسان ہے آپ کو لا کے کوئی پیغام دیتا ہے اور آپ کہیں کہ اچھا یہ ہے پیغام دینے والا، یہ میں تو نہیں اس کو مانتی، یہ پیغام لے کر آیا ہے. تو ہذا ہذا جو ہے تحقیر ہے، اور یہ آیا کس کے لیے؟ القرآنی، قرآن کے لیے. آپ سوچئے کہ کیسا تھا ان کا انکار اور کیسی تھی ان کی انکار میں شدت. کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے، ولا بالذی بین یدی، ولا اور نہ بالذی. اللہ جی جو ہے نا، اللہ جی کے دو معنی ہیں، با ساتھ. اللہ جی ایک معنی تو ہے کہ پہلی کتب، جیسے تورات، زبور، انجیل. ہم اللہ جی وہ بھی نہیں مانیں گے، وہ جو کتابیں آئی ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے. اور دوسرے اس کے معنی ہیں اللہ جی وہ جو मुराद क्या है? कयामत का दिन, दारे आखरत, अजाब। कि हम जो कयामत और आखरत और अजाब की बात है उसको नहीं मानते। बेना यदही, बेना किसके लिए आता है? दरमियान, बाजू का सामने के मानी भी देता है। और यद हाथ को कहते हैं, और हाथ यहां पे यदैन था, नून गिर चुका है। तो यदै जो है, इसे यदैन से मुराद क्या है? सामने की चीज। अब सामने की चीज क्या है? वला बिल्लजी बैना यदैही, और वो चीज जो के दोनों हाथों के सामने है। दोनों हाथों से सामने से क्या मुराद है? जो सामने पेश की गई है उससे मुराद एक मानी तो ये है, वो किताबें जो पहले आ चुकी उसको भी नहीं मानते और कुरान को भी नहीं मानते। दूसरे मानी ये है कि ये जो बात कही जाती है कि कयामत आएगी, फिर अजाब होगा, और फिर सजा मिलेगी, और आखरत का घर है, और दुनिया में इंसान मर मिट कर खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये जो कयामत की खबर दी जाती है इसको नहीं मानते, इसका इनकार करते हैं। क्योंकि कुरान क्या बताता था? कि कयामत आने वाली है, आगे एक जिंदगी है। तो वो जो थे वो कयामत का इनकार करने वाले थे, और पिछली किताबों को नहीं मानते। पिछली किताबों ने क्या खबर दी थी? कि नबी आएगा, कुरान आएगा, है ना? तो ये बात। और फिर ये अहले मक्का क्या करते थे? अहले मक्का जो थे वो यहूदियों से सुन सुनकर क्या कहते थे, और अहले किताब क्या कहते थे? कि एक नबी आने वाला है। और अहले मक्का के जो थे वो इनकार कर रहे थे, लेकिन अहले किताब क्या कहते थे? कि जब वो नबी अगर हम में से आता तो हम ईमान ले आते ना। पहले बताते रहे और बाद में वो मुनकिर हो गए। तो बात क्या हुई कि अल्लाह के रसूल का इनकार और कुरान का इनकार पहली किताबों का भी इनकार है। जिसने कुरान का इनकार किया उसने तौहीद का इनकार किया, उसने रिसालत का इनकार किया, उसने कयामत और आखरत का इनकार किया। तो यहां पे क्या बात सामने आई कि काफिर ये कहते हैं कि हम हरगिज इस कुरान को नहीं मानेंगे, और ना इससे पहले आई हुई किताबें जो हैं उनमें से किसी को तस्लीम नहीं करेंगे। वला बिल्लजी बैना यदैही, या फिर इसका आप ये तर्जुमा करेंगी कि कुरान ने जो दावत दी है कयामत की और अजाब की और दूसरी जिंदगी की, उसको नहीं मानते, सामने की चीज को नहीं मानते। आई समझ बात की? वलऊ तरा, अब यहां पे ना कयामत के दिन की मंजर कशी की जा रही है। वलऊ, और काश, तरा तुम देखते, काश तुम देखो, इज जालिमीना, इज जो है उस गुरु का मुखफ्फफ है, याद करो, जालिमुन जालिम, और सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क करना। या बुनैया इन्न शिर्का लजुल्मुन अजीम, सूरत लुकमान में आप पढ़ चुकी। तो जालिम जो है वो कौन है? मुशरिक है। और जुल्म किसे कहते हैं? अंधेरे को जुल्मत कहते हैं, रात को भी जुल्मत कहा जाता है, काफिरतुन भी रात को कहा जाता है। और जुल्म क्या है? किसी चीज को उसकी सही जगह पे ना रखना, कोई चीज उसकी सही जगह पे ना रखी जाए। तो उस दिन जालिम जो है, काश के तुम देखो, काश के तुम तसव्वुर कर सको। अब आप देखें कि ये भी एक मिसाल है ना कि हशर के मैदान का तसव्वुर किया जाए। मौकूफूना, ये इसम मफूल है, मौकूफ की जमा मौकूफून है, वौकाफा से है, और इसका मतलब है जैसे वक्फा नहीं होता। वक्फा होता क्या कि जैसे किसी को ठहराव होता है ना, जैसे किसी चीज को जो है वो उसमें एक रिसेस हो जाती है, ब्रेक आ जाती है। तो जब उनको ठहराया जाएगा, ये गोया के ये उनकी बेबसी के बारे में बताया जा रहा है कि आज ये बढ़ बढ़ कर चढ़ चढ़ कर बोलते हैं और कुफर करते हैं और शिर्क करते हैं और मजाक उड़ाते हैं और कुरान और रसूल और इस्लाम के बारे में क्या क्या बातें कहते हैं। काश के तुम कयामत के दिन का तसव्वुर करो कि जब ये जालिमों का हाल ये होगा, मौकूफूना, ये खड़े किए जाएंगे, इनको जो है वो खड़ा कर दिया जाएगा। जरा तसव्वुर तो करें उस वक्त का कि जब ये खड़े होंगे, और खड़े भी कहां होंगे? इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास। ऐसे नहीं कि यूं ही किसी आम इंसान के पास जो है वो इनको खड़ा कर दिया जाए। वो दिन इतना सख्त होगा कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जो है वो खड़े किए हुए होंगे। और आप देखें कि अल्लाह ताला की जात जो कदीर है, जो और अल्लाह जो हिसाब लेने वाला है, कैसा हिसाब लेने वाला है? हसीब है। फिर अल्लाह ताला जो है कहार है। तो उस अल्लाह के सामने जो है ये लोग खड़े कर दिए जाएंगे। और कुरान मजीद में हमें ये मजमून और जगह पे भी मिलता है अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अला यजुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अजीम यौमा यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। सूरत मुतफ़िफ़ीन आयत नंबर 4 से लेकर 6। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा किया जाएगा। तो आज ये अल्लाह का इनकार करते हैं, नशुकरी, नमक हरामी, कुफ्र। अच्छा, जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हो रहा होगा हिसाब किताब, यरजिउ बादुहुम इलाबादिन अल-क़ौल। ये बादिन था ना, और एक जेर जो है जिसको नूने कुतनी कहते हैं, उसको आप देखें नून छोटा सा डालकर और फिर जेर है और फिर हम इसको पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मुख्तसर बात बताई है कि यरजिउ राजीम ऐन से है ना, और यरजिउ लाजिम और मुतद्दी के मानी में आता है, लौटना और लौटाना, लेकिन यहां पर लौटाने के मानी में है कि ये लौटाएंगे, बादों मिला बाद एक दूसरे की तरफ लौटाएंगे। क्या लौटाएंगे? दौलत, माल नहीं, अल-क़ौल, बात। बात कौन सी? आम बात नहीं, एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे, एक दूसरे पर जो है वो एक दूसरे को मुल्जिम ठहराएंगे। तो गोया के वो दिन इतना शदीद होगा, वो दिन इतना सख्त होगा कि आज तो कुफर और शिर्क में एक दूसरे का साथ देते हैं ना, दोस्त बने हुए हैं, साथी बने हुए हैं, मोहब्बत करते हैं, आखिरत में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और फिर एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे, मलामत करेंगे, बुरा भला कहेंगे, यरजिउ बादुहुम इला बादिन अल-क़ौल, के एक दूसरे पर जो है वो इल्जाम धरेंगे। तो ये है अजमाल, मुख्तसर बात की कि कयामत के दिन जो मुता और मुती है इनका, इनकी मुकालमा बाजी कैसे होगी। आगे इसकी तफसील बताई जा रही है, मुता और मुती जो है क्या मुकालमा बाजी करेंगे, यकूलू, ये तफसील है, वो कहेंगे अल्लाजीना, वो लोग, इस्तुदेफू, जिन्हें जो है वो दबा कर रखा गया था, ज़ईफ, जो कमजोर थे, अतात करने वाले थे, गुलाम किस्म के लोग या फिर अवाम, आम पब्लिक, लिल्लाजीना, उन लोगों को, इस्तकबरू, जो कि बड़े बनने वाले थे। और आपको पता है ना, अलिफ सिंता, नून सिंता, या सिंता के मानी होते हैं मांगना, ये बाबे इस्तेफाल से होता है। तो वो लोग जो किब्र मांगते थे, और किब्र वाले कौन है, जो लीडर किस्म के लोग है ना, जो सोसाइटी में लीड करते हैं, तो वो जो मुती थे वो अपने जो मुता हैं जिनकी उन्होंने कहना माना, उनसे कहेंगे लौला अंतुम, अगर तुम ना होते, लकुन्ना मोमिनीन, तो यकीनन हम मोमिन होते। असल में हम जो गुमराह हो गए और आज हम कटहरे में खड़े हैं, और आज जो ये सजा मिलने वाली है, और आज जो हमारा यहाँ पे हाल होने वाला है, इसकी सारी वजह तुम लोग हो, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते तो क्या होता, तो हम मोमिन होते, तो हम जरूर ईमान ला चुके होते। बाज़ तालिबिन सोचते हैं ना, काश के फलां से दोस्ती ना की होती, फलां दोस्त से मैं दोस्ती ना करता ना, तो यकीनन मैं टॉप करता, क्योंकि उसके साथ मैंने अपना वक्त बड़ा जाया किया। और बाज़ किसी को पुलिस पकड़ ले आकर, और एक दोस्त ने तो डाका डालना था, एक दोस्त ने तो किसी को तंग करना था, दो दूसरे भी साथ ऐसे ही चले गए, चलो देखते हैं कि ये क्या करेगा। और जब पुलिस पकड़ती है तो उस वक्त सभी को पकड़ लेती है जो साथ खड़े हुए होते हैं, है ना, सभी को, सभी धर लिए जाते हैं ना। और फिर उस वक्त जब वो अदालत में खड़े हैं और चेन जंजीरें पहनी हुई है, तो उस वक्त इंसान क्या कहता है, काश कि मैंने उसका साथ ना दिया होता, काश कि मैंने उसका कहना ना माना होता, काश कि मैं उसके साथ आज ना गया होता। तो इंसान जो है वो दूसरे को मलामत करता है, दूसरे पर इल्जाम धरता है। और कयामत के दिन भी वो क्या कहेंगे, अपने बड़े बनने वालों से कहेंगे, अगर तुम ना होता, लकुन्ना मोमिनीन, तो अलबत्ता हम मोमिन होते। قال الذين استكبروا, अब वो जो लीडर थे ना, जो किब्र इख्तियार करने वाले, जो बड़े बनने वाले थे, वो कहेंगे للذين, उन लोगों को, نستضعف, जो कमजोर बनाकर रखे गए थे, अनहनु, यहां पे आ हमजा जो है ये इस्तफहाम इंकारी है। वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि अनानु, क्या हमने सदद नाकुम, तुमको रोका था, क्या हमने तुम्हें मना किया था, अनिल हुदा, हदायत से, बाद इज्जा अकुम, बाद इसके कि जब वो तुम्हारे पास आई थी, बलकुन तुम मुजरमीन, बल्कि खुद तुम मुजरिम थे। तो क्या हमने तुम्हें रोका था? जैसे आप सवालिया अंदाज में किसी से कहते हैं कि क्या मैंने मना किया था कि क्विज की तैयारी ना करो, क्या मैंने मना किया था कि तुम नमाज नहीं पढ़ो, क्या मैंने मना किया था कि तुम ये नेकी का काम ना करो? आप बाद का तो अपने बच्चों से बात करते हैं या दोस्तों से कहते हैं कि मैंने तो मना नहीं किया था, है ना? तो यहाँ पे भी अब जो है वो लीडर लोग वती लोगों से दबे हुए लोगों को जवाब देंगे कि क्या हमने तुम्हें उस अदाय से रोका था जो तुम्हारे पास आई थी? असल बात क्या है? बलकुन तुम मुजरिमीन, बल्कि तुम खुद मुजरिम हो। मसलन आप देखें कि कुरान की क्लास का फ्लायर बटा हजारों की तादाद में, कुछ लोग इस क्लास में आए, अब बहुत से लोगों तक फ्लायर गया और फिर कुछ लोग जो है फ्लायर को पढ़ा भी, सोचा भी, फिर जब वो आने लगे तो दोस्तों से मशवरा किया तो किसी ने कहा लो भाई अभी बहुत जिंदगी पड़ी, अभी अभी से जाकर इल्म हासिल करने की क्या जरूरत है, है ना? ईट ड्रिंक मैरी एंड डाई, फिर देखा जाएगा अभी तो रंगरलियां और खुशियां मनाने के दिन है, तो फिर ना आए क्लास में। और फिर उसके बाद इंसान ये इल्जाम धरे कि फलां की वजह से मैं क्लास में नहीं आया, आज इम्तहान है, आज नहीं जाती, आज मैं तो नहीं जा रही, तो चलो मैं भी नहीं जाती। तो क्या दूसरे की वजह से इंसान काम नहीं करता? तो इंसान क्या करता है, खुद अपनी बदअमलियां होती हैं, अपना नकम्मापन होता है, अपने अंदर वहन होता है, अपनी सुस्ती और काहली होती है, शैतान गुनाहों को और सुस्ती को खूबसूरत बना बना कर पेश करता है, इंसान काम नहीं करता और फिर इल्जाम दूसरों पर धरता है। और हम औरतों की क्या आदत है, कभी शोहरों को कहती हैं, असल में हमारे शोहर है ना, बेचारों को बाज वक्त खबर भी नहीं होती, खुद अपने अंदर ही कमी होती है, दिल अपना मान नहीं रहा होता कोई काम करने को या नेकियों में आगे बढ़ने को, तो कभी शोहर, कभी बच्चे, कभी वालदैन, है ना, दूसरों पर हम इल्जाम धरते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि वो ये कहेंगे कि ये जो हदायत हासिल ना कर सकी हम, अवाम जो हैं वो अपने लीडरों पर इल्जाम धरेंगे और लीडर कहेंगे बल्कि उनको मुजरिमीन, बल्कि तुम ही मुजरिम हो। आप जरा तसव्वुर तो करें, तसव्वुर तो करें कि हशर का मैदान, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी, अंबिया सब खड़े हैं, नेक, मुत्तकी, शहीद, सिद्दीक, हर तरह के लोग हैं, और ऐसे में कुछ लोग मुजरिम हैं और उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत है खुद हिसाब किताब लेने के लिए। वह उज़्लिफ़त जन्नत लिल्मुत्तकीन, जन्नत मुत्तकीन के करीब लाई गई है, और जहन्नुम का हाल क्या है, वह बुर्रिज़त जहीम लिमन यरा, जहन्नुम को भी खोल कर सामने रख दिया गया है, और आपस में अब उस वक्त नदामत, शर्मिंदगी, रोना धोना और इल्जाम धरना। वकाल अल्लज़ीन इस्तुज़ईफ़ू, और वो लोग जो दबे हुए थे वो कहेंगे, कहा उन्होंने लिल्लज़ीन, उन लोगों को, इस्तकबरू, जो जिन्होंने किब्र किया था, जो बड़े बने थे, लीडर होते हैं ना बहुत से लोग लीडरी करना, तो लीडर लीडरों से कहेंगे, बल मकरु लैलि वन नहारी, बल्कि मकर था रात और दिन का, इज़ता मुरूना, जब तुम हमको हुक्म देते थे, क्या हुक्म, अन्नकफुरा बिल्लाही, कि हम कुफर करें अल्लाह के साथ, वनज अला लहू अंदादा, और हम बनाएं इसके साथ शरीक। अब आप देखिए मकर के मानी होते हैं चाल के, और कौन सी चाल, खुफिया चाल, और मकर जो है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है ना? तो अब यहाँ पे क्या है, यानी दोनों तरह के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है ना। अब बात ये है कि कौन इसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। तो अब वो जो अतात करने वाले मुती लोग हैं वो कहेंगे कि बल्कि रात और दिन का एक जो था वो मकर था, गोया के शबो रोज की मकारी थी, सुबह शाम जो है उसके हीले और बहाने थे, एक वक्त नहीं सुबह शाम, मकरुल लैली वन नहार, गोया के तुमने जो है वो प्रोपेगंडे की एक मुहिम उठा रखी थी, ना रात छोड़ते थे ना दिन, दिन रात तुम जो थे वो मकरो फरेब के जरिए जो थे वो हमें अलहुदा से रोकते रहे। और अलहुदा क्या है, सिराते मुस्तकीम, रसूल का साथ देना, कुरान को समझना, उस पर चलना, जन्नत की तैयारी करना, रब को राजी करने की फिक्र करना। तो अब कमजोर लोग अपने जो लीडरों को कहेंगे, बल्कि रात और दिन की एक मक्कारी थी, रात और दिन का एक फरेब था, शबो रोज की चालें थी, हर वक्त तुम हमारे पीछे पड़े रहते थे, हर वक्त तुम प्रोपेगंडा करते थे, हर वक्त तुम हमें जो थे वो नित नए तरीके से जो है वो इस तरह से जाल फैलाते थे, हर रोज हमें फांसने की कोशिश करते थे कि इस तरह जो है वो हम नेकियों से हट गए। इज्ता मुरूनाना, यानी सुबह शाम तुम हमारे पीछे पड़े रहे और हमें हुक्म देते रहे, यहां तक और हुक्म भी क्या कि हम कुफ्र करें अल्लाह के साथ यानी शरीक करें, पन्ना जला लहू अंदादा और दूसरों को इसका हमसर ठहराए। अंदादन जो है निदुन से है और इसके मानी क्या है, वैसे आपको पता ही है कि निदा का मतलब होता है पुकारना और बुलंद आवाज से पुकारना, नादी, ये सारा पहले भी पढ़ चुकी हैं। तो अंदादन क्या है कि दूसरों को यानी झूठे जो माबूद हैं उनको भी अल्लाह के साथ जो है वो शराकतदार समझें, उनको भी जो है वो अल्लाह की खुदाई में, अल्लाह के इख्तियारात में, अल्लाह की सिफात में जो है वो हम हमसर ठहराए। तो दिन रात तुमने हम पे ऐसे जाल फेंके कि हम तुम्हारे जो जाल थे ना उसके अंदर आ गए। और आप देख लें कि बाज़ुकात ये चौधरी सियासी लीडर या बाज़ुकात जो नाम निहाद आलिम होते हैं तो क्या करते हैं कि अवाम को जो है वो झूठे प्रोपेगंडे के जरिए मत ही मार देते हैं, उनको बहकावे में ले आते हैं, सही सिरात मुस्तकीम का रास्ता ही नहीं दिखाते। बहुत सी रस्में, रस्मों के जाल हैं, कभी अबाउ अजदाद की बात, कभी ये कि जो पुराने लोग थे वो क्या बेवकूफ थे। तो इस तरह बहुत सी रस्में हमारी जिंदगी में आज भी कायम हैं। तो अब मुती जो है वो मुता पर इल्जाम धरेंगे अपने लीडरों पर और उन्हें कहेंगे कि ये तो यानी तुमने एक दफा नहीं कहा था, इतना कहते थे कि ना रात छोड़ी ना दिन छोड़ा। और बाज का ऐसा होता है ना कि बाज आपके पीछे ही पड़ जाते हैं। मसलन आपने क्लास शुरू की, आपने सोचा मैं लेती हूँ, लेकिन किसी ने कहा लो, अब ये क्या तुम मुसीबत में पड़ गई, फिर घर आती हो, फिर खाना पकाना पड़ता है और फिर बच्चों को देखना पड़ता है और देखो तुम्हारी तो रंग ही काला लग रहा है, अब तुम्हारी सेहत मुझे बड़ी मुतासर लग रही है, सारा वक्त तुम हर वक्त कुरान के साथ ही लगी रहती हो, अब तुम्हारे लिए अपनी जात के लिए तो कोई वक्त ही नहीं है। कभी कभी आपकी जात से मोहब्बत का एहसास दिलाया जाता है, कभी आपकी जवानी, कभी आपके बच्चे, कभी आपका घर, और कभी ये कि अब वो तो ना वो दावतें होती हैं, ना वो ब्रेकफास्ट, ना ब्रंच, ना लंच, ना वो शाम में, ना वो कपड़ों का सीना, ना वो शॉपिंग पे जाना, ना वो जो है वो बारबेक्यू करना, ना वो गार्डन जाना, अब वो बात ही नहीं रही ना। ये किस मुश्किल में तुम पड़ गई, ऊपर से अब क्विज होने शुरू हो गए, है ना। अब पहले तो लिख कर इम्तहान होता था, अब जबानी होने लगा, और फिर साथ साथ ये भी मुश्किल के अब अमल भी करना है, तो ये बड़ी मुश्किल है। तो फिर होता क्या है कि कभी ना कभी किसी ना किसी का वार जो है वो चल जाता है, तो कभी क्या करते हैं इम्तहान मिस करते हैं, कभी छुट्टियां करने शुरू कर देते हैं, कभी कहते हैं अच्छा सुनो के ढेर लगे हुए हैं और मुझे भी क्या जरूरत है जाने के लिए, फिर मैं भी घर में बैठ जाती हूँ, और ऑनलाइन भी ठीक है, अच्छा ऑनलाइन आ तो रही है आवाज, चलो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, साथ में मैं कुछ ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, और मैं थोड़ी सी कॉलें कर लूँ, इतने दिनों से मैंने वो कॉलें भी नहीं की। तो क्या होता है, इंसान जो है वो जो सिराते मुस्तकीम है या अलहुदा है या सीधा रास्ता है कुरान का रास्ता, उससे जो है इंसान हटता चला जाता है। तो उसके ईमान में, उसके शौक में, उसकी तैयारी में, उसकी आखिरत की मुलाकात की तैयारी, रब की मुलाकात का शौक, उसमें फर्क पड़ने लगता है, उसके रवैये, उसका मिजाज, उसमें जो है तब्दीली आने लगती है। तो उस वक्त जो है ये आपस में एक दूसरे को मलामत करेंगे और जब वो अजाब को देखेंगे तो क्या करेंगे, वह असर उन नदामता, और अपनी नदामत को छुपाएंगे, सीन रा रा, सिर छुपाना, और वो छुपाएंगे, और आप देखें शब्द आई है बहुत ज्यादा छुपाएंगे नदामत, और ये कौन सा छुपाना है, एक छुपाना होता है कि आप जाहरी तौर पर कोई चीज छुपाते हैं और एक होता है बातनी तौर पर छुपाना, और ये कल्बी कैफियत का छुपाना है, क्योंकि नदामत जो है ना, नदामा, ये नदामत जो होती है ना शर्मिंदगी दिल के अंदर होती है। अब दिल के अंदर जो शर्मिंदगी है ना कि असल में दूसरों मकालमाबाजी हो रही है, एक दूसरे पे इल्जाम धरा जा रहा है, लेकिन दिल शर्मिंदा है कि असल में मैंने तो हदायत के रास्ते पे खुद ही नहीं चली, मैं खुद ही संजीदा नहीं थी, है ना। तो आप क्या करेंगे, वो अपनी कल्बी कैफियत को, बातनी कैफियत को छुपाएंगे, और यहां पे है वह असर रू, असर इस्तेमाल हुआ है कि सवाल और जवाब आपस में कर रहे हैं, मुकालमाबाजी हो रही है और अजाब सामने देख रहे हैं, लम्मा रावुल अजाब, जबकि वो अजाब को देखेंगे, अजाब सामने खड़ा है, अपनी बदबख्ती पर पशेमान है। और अजाब क्यों सामने आया, इसलिए कि अल्लाह ने उनके किसी उजर को कबूल नहीं किया, यरजऊ बादहुम इला बादिन अल-क़ौल, अल्लाह ने उनका कोई उजर नहीं सुना, कोई उनका बहाना जो था उनके काम नहीं आया। मुजरिमों का जो है, मुजरिमों का अपने बड़ों को जो है वो मुर्दे इल्जाम ठहराना और बड़ों का छोटों को, अब कुछ काम नहीं आया, सामने अजाब नजर आ गया है और दिल ही दिल में शर्मिंदगी को छुपा रहे हैं, नदामत कर रहे हैं। वजअलनल अगलाला, और डाल दिया हमने अगलाल को कहां पे, फी आनाक, गर्दनों में। अल्लादीना, उन लोगों की, कफारू, जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने इनकार किया। अब आप देखें, अगलाल जो है ये गुल की जमा है, और तौक को भी कहते हैं और जंजीरों को भी कहते हैं। तौक क्या होता है, कभी आपने देखा तौक? ये जो नेक कॉलर होता है, बाज़ुकात किसी की गर्दन में भी जो है वो दर्द होता है तो आप एक कॉलर सा इस्तेमाल करती हैं, एक खास पोजीशन में गर्दन को रखने के लिए, उससे फिर आपको रिलीफ मिलता है। और पुराने जमाने में मुजरिमों को ऐसी जंजीरें पहनाई जाती थी जो कि जैसे गर्दन के ऊपर, कि गर्दन जो है ना एक खास पोजीशन में रहे, अकड़ी भी रहे। और ये जो गलल है ना, जैसे अगलाल जो है इसका रूट क्या है, गैन लाम लाम, तो गलल जो है किसी चीज को ऊपर ओढ़ना या किसी चीज के अंदर घुस जाना, दोनों मानी ये लफ्ज देता है। अब आप देखें कि जंजीरें क्या की जाती हैं, ऊपर उड़ा दी जाती हैं। और आपको पता है ये गुल लफ्ज दो तरह इस्तेमाल होता है, मानवी भी और मादी लिहाज से। मानवी तौर पर क्या चीज इगलाल है, कीना, कदूरत, हसद, जो दिलों के अंदर पाया जाता है ना। और मादी लिहाज से वो जो के ऊपर डाल दी जाती हैं, जैसे तौक या फिर जंजीरें, चेंज। तो तौक क्या है कि गर्दनों को खास पोजीशन में रखा। वजअलनल अगलाल फी अनाक, कुरान में क्या आया है, उनुक की जमा है अनाक, और गर्दन को कहते हैं, गर्दन के लिए जीत का लफ्ज भी आया है, खूबसूरत लंबी गर्दन को जीत कहते हैं। अबू लहब की जो बीवी है उम्मे जमील, उसके लिए जीत का लफ्ज है, जी दी हा मस, है ना, कि उसकी गर्दन में क्या होगी, मून की रस्सी होगी जो बटी भी होगी। लेकिन यहाँ पे उनक, ये कौन सी गर्दन है, आम गर्दन का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इनकी गर्दनों में अल अगलाल होंगे, तो इस तरह से इनके ऊपर जो हैं जंजीरें और तौक डाल दिए जाएंगे, बेड़ियां होंगी लोहे की जिसमें इनकी गर्दनों से इनको जकड़ा जाएगा, यानी गर्दनों को ही जकड़ दिया जाए। और किसी की गर्दन जकड़ दी जाए तो पूरा जिस्म जकड़ा हुआ होता है ना, हिला नहीं सकते गर्दन को। वजअलनल अगलाल फी आनाक, और इनकी गर्दनों में तो अगलाल क्यों डाले जाएंगे, अल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया। हल युजज़ाउना, क्या जजा दी जा सकती है, इल्ला मगर, मा कानू यामलून, सवाए उसके जो कि वो अमल करते रहे। तो या इसका निचोड़ क्या है, अमल और जजा जो है वो एक दूसरे से मुताबकत रखती है। इनका अमल क्या था, इस तक बरू, तकबूर किया था। तो तकबूर, तकबूर होता कहाँ है, गर्दन में, दिल में, सर में, तकबूर से गर्दन अकड़ जाती है। इस तक बरा, फिरौन ने तकबूर किया तो क्या किया, फकज़्ज़बा, इस तक बरा। इबलीस ने किया तो क्या किया, वस्तकबरा, काना मिनल काफिरीन, है ना। इंसान क्या करता है, चालें चलता है। तो तकबूर क्या था, अल्लाह का इनकार और दूसरों की गुलामी का कलादा लिया अपनी गर्दनों पे। दूसरों की गुलाम बनना तो कबूल कर लिया, पीयर प्रेशर, सोसाइटी, रस्म और रवाज, अबाओ अजदाद, लीडर किस्म के लोग, चौधरी किस्म के लोग, दुनिया से मोहब्बत करने वाले उनके पीछे चले, और अब शर्मा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे हैं, और हमने भी अगलाल डाल दिए हैं इनकी गर्दनों पर इसलिए कि इन्होंने कुफर किया। तो क्या जो अमल किया गया है, क्या इसका बदला इसके सिवा कुछ और भी दिया जा सकता है, वो गर्दनें जो तकबूर से अकड़ जाती थीं, आज इन गर्दनों पर तौक डाल दिए गए हैं। जैसा अमल है, जैसा जो है वो उसने अमल किया, वैसी ही उसको जजा मिल रही है। तो गोया के अमल और जजा में मुशाबियत है, आप ये बात याद रखें। हल युजज़ऊना इल्ला मा कानू यामलून। फिर फरमाया कि गोया वमा अरसलना फी करियतिन, और नहीं भेजा हमने फी करियतिन, में करिया, करिया जो है ये नकरा इस्तेमाल हुआ है, और करिया का लफ्ज छोटी बस्ती के लिए भी आता है, बड़ी बस्ती के लिए भी, गोया के कोई भी बस्ती, यानी हमने किसी भी बस्ती में بھیجا من نذیرین, کوئی نذیر کوئی ڈرانے والا, الا مگر قال مترفوها, کہا اس کے مترفین نے, مترفون جو اصل میں مترفون تھا, نون گر چکا ہے, یہ سب مفعول ہے, اور مترفون کا لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے, تارافا, اور اس کے معنی کیا ہیں, اس کے معنی ہوتے ہیں ناز اور نعمت کی فراوانی کے, کسی کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو, اغنیا مالدار قسم کے لوگ, قوم کے رئیس. تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بستی میں کوئی رسول بھیجا تو اس کے جو مترفین تھے انہوں نے کیا کہا, انا بما ارسلتم بہی کافرون, کہ بے شک ہم بما جو کچھ ارسلتم بہی تم بھیجے گئے ہو بہی اس کے ساتھ کافرون, ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. تو بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے وہ جو نذیر آیا, وہ جو ڈرانے والا رسول آیا, اس نے جا کر لوگوں کو جب ڈرایا تو لوگوں نے کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کے ساتھ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. اور آپ دیکھ لیں تو یہاں جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مال اور دولت کی کثرت نے, مال اور اولاد کی کثرت نے ان کو جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ نشے میں مبتلا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ توحید کا انکار کر دیا. تو اب یہاں پہ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اہل مکہ اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, ہر دور میں جب بھی کسی بستی میں کوئی رسول بھیجا گیا تو مترفین نے جو ہے وہ رسول کا انکار ہی کیا, رسول کو مان کر ہی نہیں دیا, کہا ان بما ارسلتم بہی کافرون. تو ارسلتم بہی جو ہے اس کے اندر کیا بات ہے کہ جس رسالت کے تم مدعی ہو یہ تمہارا زوم ہے, ہمارے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وقالو, اور وہ کہنے لگے, اور انہوں نے کہا نحنو اکثر اموالاً و اولاداً, ہم ہیں اکثر, اکثر کے معنی کیا ہیں, بہت ہیں, زیادہ, افعلو کے وزن پر ہے اسم تفصیل کے, زیادہ ہے, اموالاً مال کی جمع اموال ہے, و اولاد ولد کی جمع اولاد, اس میں ہر طرح کی اولاد شامل ہے, تو ہم جو ہیں مال اور اولاد جو ہے وہ زیادہ رکھتے ہیں, وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں. تو ان کی دلیل کیا تھی کہ اللہ نے ہمیں بہت مال اور اولاد سے نوازا ہے, ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, تبھی تو اللہ نے دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہم پر کیے ہے. تو جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے, بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں بھی ہمیں کوئی عذاب دینے والا نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, تو وجہ کیا ہے کہ تم ہو غریب اور ہم ہیں امیر, تم ہو کمزور اور ہم ہیں قوی, دنیا میں ہم پر کوئی عذاب نہیں آیا تو آخرت میں ہم پر کیسے عذاب آئے گا. تم جو ہمیں ڈرا رہے ہو کہ رسول کا انکار, قیامت کا انکار, توحید کا انکار جو ہے وہ کیا ہے کہ پھر قیامت اور عذاب, تو عذاب کوئی نہیں آنے والا. قل, کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے ان سے, ان ربی, بے شک میرا رب, یبسط الرزق, رزق کو کھلا کر دیتا ہے, بساتا بسیط, کھلا کرنا, کشادہ کرنا, فراوانی. تو مال کی فراوانی جو ہے وہ کیا ہے کہ میرا رب کھلا رزق دیتا ہے, لمن یشاء, جس کو چاہتا ہے. تو یہ مال کا کسی کے پاس کثرت سے ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے, بلکہ کیا ہے, یہ استدراج ہے. آپ پیچھے پڑ چکی ہیں, استدراج, کہ مال کی کثرت کے ذریعے درجہ بہ درجہ اس کو جو ہے وہ امتحان کے ذریعے گناہ میں مبتلا کرتے چلے جانا. تو یہ دولت, یہ عزت, یہ جاہ و منصب جو ہے اللہ کے نزدیک قبولیت کی دلیل نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے, اور اللہ کی مشیت اللہ کی حکمت کے تابع ہے. یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ رہی دنیا تو یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے, اور جو اللہ کی مشیت ہے وہ اللہ کی حکمت کے تابع ہے. اللہ کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہیں, اور جہاں رزق کی تقسیم کی بات ہے تو یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے. اگر کسی کو زیادہ مل رہی ہو, کوئی امیر ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے. اور اگر کسی کو کم دے رہا ہے اللہ, وہ یقدر, اور وہ کم کرتا ہے, اور یقدر جو ہے اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ یقدر کے ساتھ جو بات آئی ہے وہ کیا ہے, لمن یشاء, کہ جس کو وہ چاہے. है ना, इसका ये नहीं मतलब कि रिस्क की कमी अल्लाह की नाराजगी की दलील है। तो क्या है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसको कम रिस्क देता है, वला किन्ना अक्सर नासिला यालमुन, और अक्सर लोग इस बात का इल्म ही नहीं रखते, उनको ये बात समझ में आती नहीं। तो लोगों जरा आंखें खोल कर देखो कि बाज़ुकात नापाक और मुजरिम किस्म के लोग खुशहाल होते हैं, जैसे अहले मक्का के सरदार थे, और बहुत नेक और शरीफ किस्म के लोग जैसे सहाबा थे रसूल अल्लाह। आप देख ले अंबिया का साथ देने वाले बड़ी तंगदस्ती में मुब्तला होते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि अल्लाह उनसे नाराज है और उनसे खुश है। ये दुनिया का माल है और ये अल्लाह की मशीयत के ताबे है, ये अल्लाह की मर्जी है। और रिस्क की ज्यादती, माल की फरावानी इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है, और माल की तंगी अल्लाह की नाराजगी की दलील नहीं है। और लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम, और नहीं है तुम्हारे माल और ना ही तुम्हारी औलादे, बिल्लती वो जो के बा यानी जिनके साथ अल्लाह ती जो के तुकर्रिबुकुम तुम्हें करीब कर दे, इंदना हमारे जुल्फा दर्जे में, जुल्फा जो है ये मसदर है और तुकर्रिबुकुम के मानी में ही है दर्जा। अब आप देखें कि एक लफ्ज है तुकर्रब, तुकर्रिब, और दूसरा है जुल्फा, और ये इस्तेमाल होता है नजदीक के लिए, है ना। और नजदीक के लिए कुरान में जो है बहुत से लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, सात हुए हैं, और यहां पर जो है वो दो आए हैं। तो तुकर्रिबुकुम का रूट क्या है, काफ राबा, इसके मानी होते हैं नजदीक होना। ये बड़ा जामे लफ्ज है, कैसे नजदीक होना, फासले की नजदीकी, या फिर नसब की नजदीकी, या फिर मंसलत की नजदीकी, है ना, जगह की नजदीकी, मुख्तलिफ तरह से ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है ना। तो क्या मतलब है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें, एक माल नहीं, अमवाल, हर तरह का माल, जो भी माल जिसका दुनिया में इंसान तसव्वुर कर सकता है, और तुम्हारी औलाद, बिल्लती वो जो के तुकर्रिबुकुम तुम्हें करीब कर दे, नजदीक कर दे, इंदाना हमारे यानी किसके, अल्लाह ताला के, जुल्फा कह दिया। और जुल्फा ये मजदर इस्तेमाल हुआ है किस लिए, ताकीद के लिए। और जालामफा के मानी होते हैं दर्जे और मर्तबे में नजदीक आना, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला कहते हैं वा इन्ना लहू इंदना लजुल्फा व हुस्ना माब, और सुलेमान के लिए हमारे यहां कुर्ब और उम्दा मकाम है सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसी तरह आप कहती हैं कि वो फलां का हम जुल्फ है, उसके करीब आ गया ना, जो दो बहनों के शोहर होते हैं वो आपस में क्या उनका रिश्ता होता है, हम जुल्फ का होता है ना। और आप जन्नत के लिए क्या है, इजल जन्नत उजलिफत, जब जन्नत करीब लाई जाएगी, किसी को करीब करना। तो अब क्या है कि दर्जे में और मर्तबे में क्या नजदीक कर देगी, और नहीं तुम्हारी औलाद और तुम्हारी दौलत जो कुर्ब दे दे हमारा, जुल्फा दर्जे में मर्तबे में, जुल्फा यहां पे तुकर्रिबुकुम के मानी में है। तो तुम्हारी औलाद और माल जिसकी वजह से तुम समझते हो कि हम अल्लाह के बड़े करीबी और चहेते हैं, हम अमीर लोग हैं, मुतरफीन हैं, और याद रखना ये माल और औलाद जो है वो तुम्हें अल्लाह के करीब नहीं कर सकती, तुम्हें अल्लाह के का करीबी दर्जा जो है वो नहीं दे सकती। तो फिर किसे दर्जा मिलेगा, इल्ला मगर मन आमना व अमला सालेहन, जो ईमान लाए और अमले सवाले करे। तो ईमान और अमले सवाले रखने वाले जो है ना वो अल्लाह का करीबी दर्जा जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। मुफस्सरीन कहते हैं कि इस जुमले के दो मानी हैं, एक तो यही तर्जुमा कि अल्लाह से करीब करने वाली चीज माल और औलाद नहीं है बल्कि ईमान और अमले सवाले हैं, और दूसरे मानी क्या है कि माल और औलाद सिर्फ उस मोमिन सवाले इंसान के लिए जरिया तकर्रुब बन सकते हैं जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करे और अपनी औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत देकर उसका नेक किरदार बनाने की कोशिश करे। तो उसकी उसका माल और उसकी औलाद जो है वो भी जो है उसके लिए जरिया तकर्रुब बन सकते हैं, यानी अल्लाह का अल्लाह के लिए जरिया तकर्रुब बन सकते हैं। इस तरह वो इंसान जो है वो अल्लाह का करीबी हो सकता है। समझ आई बात की, कि माल और औलाद जो है वो शेखी बिगाड़ने की कोई चीज नहीं है। मसलन बाज लोग जो है उनकी माल और औलाद जो है वो जब उनके पास बहुत ज्यादा होती है तो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जैसे सूरत कहफ में आप पढ़ी चुकी انا اکثر من کا مال و عز نفرا، ہے نا؟ یا پھر ولید بن مغیرہ کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا زوم تھا، ابو لہب کو بڑا مال اور اولاد پر زوم تھا، تو کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنہ ماله وما کسب، کچھ بھی اس کا کام نہ آیا. تو مال اور اولاد انسان کے کچھ کام نہیں آنے والی. اللہ کا قریبی درجہ مال اور اولاد بھی دلوا سکتی ہے، اس کی کثرت نہیں. ہاں کب دلوا سکتی ہے؟ جب وہ مال ہو اور اللہ کے راہ میں خرچ ہوتا ہو اور اولاد ہو نیک. یہ بات یہ شرط ہے نا، اللہ من آمنا و عمل صالحا، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی وہ خود بھی اور اس کی اولاد بھی، تو پھر اللہ کے قریبی درجہ ان کو دلوا سکتی ہے، اللہ کے ان کو قریب کر سکتی ہے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ، بس ایسے ہی لوگوں کے لیے بدلہ ہے ضعف. ضعف کا لفظ جو ہے ضاد عین فا، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو ہے دگنا، مثل کے یہ لفظ، مثل کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور اس سے مراد کیا ہے کہ مثلا جیسے ایک چیز ہے تو اس کے مثل جو ہے وہ دوسری چیز، اور دوسرے اس کے معنی جو ہیں وہ کئی گنا، کئی گنا. اس کا ترجمہ امثال سے کیا جاتا ہے، مثل نہیں، امثال، لا محدود. تو جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عمل کی جزا دگنی ہے، دوہری ہے. ہمیں یہ بھی ملتا ہے، پیچھے آپ نے دیفین ازواج محترات کے بارے میں بھی پڑھا، اور آپ جو ہیں اس سے پہلے یہ بات بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ انسان دنیا میں جو عمل کرتا ہے تو اس کا عمل کا بدلہ جو ہے وہ کتنا ملے گا؟ کئی سو گنا، ہے نا؟ 10 گنا، 700 گنا اور کئی سو گنا. تو نیت کے مطابق جو ہے انسان کو جو ہے وہ انسان کے عمل کا جو ہے وہ بدلہ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک اس کے معنی ہے کہ ان کو ان کے عمل کی جزا دگنی دی جائے گی، اور دوسرے اس کے معنی ہے کہ کئی گنا زیادہ، لا محدود ان کو جزا دی جائے گی. کیوں دی جائے گی؟ بما عملو، جو انہوں نے عمل کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کے عمل کی جزا دی جا رہی ہے یا تو دگنی، اور یا پھر یہ کہ کئی گنا زیادہ. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، آمِنُونَ. اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم ایمان اور عمل صالح رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فی الغرفات میں ہیں. غرفہ کی جمع غرفات ہے، اور غرفات میں آمنون، آمین کی جمع آمنون ہے، تو امن کے ساتھ ہیں. تو غرفات جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ کمرے کے لیے قرآن میں جو ہے وہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے حجرے کا اور دوسرا ہے غرفہ کا. تو حجرہ جو ہے وہ عام کمرے کو کہتے ہیں، جیسے ازواج محترات کے بھی تو حجرے تھے نا. تو غرفہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ غرفہ جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو درجے کے لحاظ سے اونچا درجہ، یعنی جو غرفہ ملے گا، جو ان کو محل ملے گا، جو ان کو عمارت ملے گی، وہ درجے کے لحاظ سے اونچی ہوگی. اس بات کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ اس بات کا پتہ ہمیں جو ہے وہ حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو جنت ہے نا، جنت کے اوپر نیچے 100 درجے ہیں، اور جو اللہ کے بندے نیک ہوں گے جن کی اچھی صفات ہوں گی، تو ان کی صفات کے مطابق جنت میں تو نیک لوگ چلے گئے، اب جنت میں بھی کون سے درجے پر ہیں؟ کچھ بلندی درجات پر ہوں گے، اور کچھ جو ہے جنت میں کم تر درجے پہ ہوں گے. اور پھر ان کی نیکیوں کے مطابق جو ان کو درجے ملیں گے، اس کے مطابق ان کا استقبال ہوگا، جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور وہاں پہ جنت میں ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی اور حوصلہ افزائی جو ہے وہ کی جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ مثلا آپ سورت الفرقان میں بھی یہ آیت جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں، اولئک یجزون الغرفہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جو ہے ان کو بدلہ ملے گا غرفہ کی شکل میں. اور وہاں پہ سورت الفرقان میں آپ نے بہت سی صفات بھی پڑھی تھی. آخری رکوع ہے اور یہ آیت نمبر 75 ہے جس کا میں حوالہ دے رہی ہوں، تو وہاں پہ بھی ہمیں غرفہ کا ذکر ملتا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ غرفہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ جنت میں مقربین خاص کے لیے ایسے غرفات ہوں گے जो आम अहले जन्नत को ऐसे नजर आएंगे जैसे जमीन वाले सितारों को देखते हैं। सुभान अल्लाह, यानी जन्नत के जो 100 दर्जे हैं उसमें एक दर्जे का दूसरे दर्जे से कितना फर्क है। आम जन्नत में सभी हैं, आम जन्नती जो हैं, जो ऊंचे दर्जे वाले जन्नती हैं, उनको देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा जैसे वो जमीन पर रहे हैं, वो सितारों पर, इतना आपस में फासला। और इसी तरह मुस्नद अहमद तिर्मिजी की एक और रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे हुरफे होंगे जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बैरूनी हिस्सा अंदर से नजर आता होगा। जैसे ग्लास नहीं होती, शीश महल, और कैसी बात है कि ऐसे बर्तन इस्तेमाल किए जाएं, या ऐसा घर के शीशे का बना हुआ और अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नजर आता, तो क्या नजारे हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा रेस्टोरेंट बना और लोग भाग भाग के वहां खाने के लिए जाने लगे कि वो ऐसे शीशे का बना हुआ है कि बाहर जो आबशारें और चीजें उन्होंने बनाई हैं बाहर से नजर आती हैं, तो गोया के खाने का मजा भी और बाहर की सीनरी का मजा भी। भैया वक्त जो है वो ले तो बड़े उसके पैसे भी हैं, बाहर लोग जा रहे थे। खैर, तो हम सबको ये चीजें बड़ी पसंद आती हैं। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमाया कि जन्नत में ऐसे गुरफे होंगे जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बैरूनी हिस्सा अंदर से नजर आता होगा, लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये गुरफे किन लोगों के लिए हैं। अब सोचे तो सही, आप भी सवाल करें, मैं भी पूछूं कि अल्लाह के नबी ये किनको मिलेंगे, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी तो यहां मौजूद नहीं है, अब उनसे तो नहीं पूछ सकते, लेकिन उनकी अहदीस हमारे लिए रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आपने फरमाया, जो शख्स अपने कलाम को नरम और पाक रखे, नंबर 2 हर मुसलमान को सलाम करे, नंबर 3 और लोगों को खाना खिलाए, और नंबर 4 और रात को उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हों। सुभान अल्लाह, रातों को जागने वाले हैं, मेहमान नवाज हैं, सलाम करने वाले कौन होते हैं, जो खुश इखलाक हैं, नरमी करने वाले, लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, बिमा अमलू क्या है, ये है अमल, वहुम फिल गुरुफाती, और वो गुरफात में है। तो गुरफे के एक मानी क्या है कि दर्जे के लिहाज से ऊंचा, और दूसरे मानी है बलाई मंजिल। मसलन आप देखें कि कुछ घर ऐसे होते हैं जो ये एक ही लेवल पर होते हैं, है ना, और कुछ घर होते हैं कि वो डबल स्टोरी होते हैं, अपर स्टोरी। तो घरों में भी आप क्या करती हैं कि बाज लोग 2 लेवल 3 लेवल पसंद करते हैं और अपना बेडरूम ऊपर रखते हैं कि नीचे का शोर शराबा हमें नहीं चाहिए, तो नीचे लिविंग रूम है, गेस्ट रूम है, किचन है, लेकिन बेडरूम ऊपर रखे हुए हैं और खामोशी से जाके ऊपर फिर आराम करते हैं, मजे करते हैं, है ना। तो क्या है, वहुम फिल गुरुफाती, यानी गोया कि वो नीचे के लेवल पे नहीं है, ऊपर के लेवल पर है। यानी ये भी हो सकता है कि दर्जे के लिहाज से बुलंदी, और ये भी हो सकता है कि वैसे बनावट के लिहाज से ऊंची जगह। तो बाहर हाल वहुम फिल गुरुफाती, वो गुरुफात में होंगे, आमिनीन। और फिर आप देखें घर के अंदर होना और फिर अमन और सुकून के साथ होना बड़ी बात है। वल्लज़ीना यसअउना फी आयातिना, रहे वो लोग, यसअउना सही करना, दौड़ धूप करना, तेजी दिखाना, भागना, जो दौड़ धूप करते हैं, फी आयातिना हमारी आयात में, और आयात में जो दौड़ धूप करते हैं किस लिए, मुआजिज़ीना, और मुआजिज़ीन के मानी मैंने आपको बताए थे, आप सूरत सबा की आयत 5 में भी पढ़ चुकी हैं, एक दूसरे को शिकस्त देने के कसद से वहां मुसाबकत करना। तो वो दौड़ धूप करते हैं इस्लाम को शिकस्त देने में, शक्कत ले जाने में, उलाई कफिल अजाबी, और वो अजाब में है, मोहदरून। मोहदरून जो है इसके मानी क्या है कि मोहदर की जमा है मोहदरून, और हाजिर किए जाएंगे, गोया के ये मजहूल है ना, खुद नहीं आ रहे, ये जिल्लत और बेबसी की तस्वीर है कि वो ऐसे जलील और रुस्वा होंगे कि दुनिया में इस्लाम को, कुरान को, प्यारे रसूल को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करते रहे, इनकार करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन आज जो हैं ये मुहदरून हैं। और फिर आप देखिए, कुल इन्ना रब्बी, कह दीजिए कि बेशक मेरा रब, यबसुतुर रिज़्क़ा, वो रिज़्क़ को खुला कर देता है, लिमन यशाउ, जिसके लिए वो चाहता है, मिन इबादिही, अपने बंदों में से, यकदिरूला, और वो कम भी कर देता है, और इसके अंदर आप ये भी ले लीजिए कि लिमय शाह उमिन बाद ही, कि वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है। तो ये क्या है, ये अल्लाह की मशीयत है। तो अल्लाह की मशीयत अल्लाह की हिकमत के ताबे है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज्क को बढ़ाता है और जिसके लिए चाहता है रिज्क को कमी कर देता है। तो रिज्क और फजल जो है ये कुशादगी जो रिज्क की और तंगी रिज्क की सब अल्लाह के अख्तियार में है। अगर किसी के पास हो तो उसको कुशादी पर इतराना नहीं चाहिए, और अगर किसी के पास रिज्क की तंगी है, औलाद नहीं है, माल नहीं है, तो उसको मायूस भी नहीं होना चाहिए। हर शख्स को ये बात याद रखनी चाहिए कि दोनों हालतें जो हैं वो अल्लाह की हिकमत के तहत हैं, और अल्लाह ताला जिनको दे रहा है तो उनका भी इम्तहान ले रहा है, जिनको नहीं दे रहा तो उनका भी इम्तहान ले रहा है, जिनको दिया है तो उनके शुक्र का इम्तहान और जिनको नहीं दिया तो उनके सब्र का इम्तहान। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में जो है वो क्या किया, जो पीछे बात थी ना कि मुतरफीन ने कहा नहनु अक्सरु अम्वालुन व औलादुन औलादन औलादन वमा नहनु बिमुअज्जबीन, तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि ये तुम्हारे अकड़ने की बात नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है, जिसको ज्यादा दे वो चाहे और जिसको चाहे वो कम दे दे। तो इससे हमें और फिर क्या बात पता चलती है, मैं और आप कुछ भी करें, आप बहुत खुशकिस्मत हैं वो जिनकी औलाद बहुत अच्छी है, तालीमी लिहाज से बड़ी कामयाब है, बड़ी फर्मा बरदार है, बड़ी नेक है, लेकिन आपका वो एजाज नहीं है। वो आप उसके ऊपर ये ना हो कि फखर करने लगें और इतराने लगें और कहें कि दूसरों को, उनको तो जो है वो बच्चों को पालना नहीं आता, तालीम और तरबियत देनी नहीं आती। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहू मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अता करता है। अल्लाह ने आपको तौफीक दी तो आपने उनकी तालीम और तरबियत की। कहां है वो लोग जो अपनी तरबियत का मान करते हैं, वो भी इस बात को याद रखें ये अल्लाह की देन है। और कुछ लोग बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, कभी उनको जो है वो टिकट नहीं मिला, ये अल्लाह की देन है कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी। फबिज़्निल्लाह, आपको इससे मान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो उनको उन्होंने अपने बच्चों को तालीम बड़ी अच्छी दी, यानी इल्म में उन्होंने बड़ी डिग्रियां हासिल की, तो ये अल्लाह की देन है। तो दुनिया में जो कुछ मेरे और आपके पास है, हमें कारून और फिरौन नहीं बनना चाहिए, मक्का के सरदारों की तरह शेखियां नहीं बिगाड़नी चाहिए, मुतरफीन नहीं बनना चाहिए, कभी अपने ऊपर इतराना नहीं चाहिए। अगर कल किसी का जो है वो क्विज में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया तो वो कहे कि मैंने तैयारी बड़ी अच्छी की थी, और मैं और फिर मैं नहीं, बात ये नहीं है, ये अल्लाह का फजल है जो अल्लाह ने आपको दिया, आपको याद करने के लिए आपके वक्त में बरकत दी, आपके जहन में वो बात रही, और आपने आयतों के नंबर तक बता दिए, बड़ी बात है, वैसे बड़ी बात है, लेकिन शुक्र उस खुदा का जिसने उम्मत मोहम्मदी में ऐसे लोग पैदा किए। तो तारीफ अल्लाह की है। तो आगे असल में पैगाम दे दिया, वमा अनफक्तु मिन शैइन, और जो कुछ तुम खर्च करोगे मिन शैइन, चीज में से, यानी जो कुछ भी तुम्हारे पास है, माल है, औलाद है, दुनिया में अल्लाह ने जो कुछ दिया उसको तुम खर्च करोगे। और यहां पे आप वमा अनफक्तुम के आगे फी सबीलिल्लाह समझे, आप फी सबीलिल्लाह है नहीं, लेकिन असल बात यह है कि जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में जो तुम्हारे पास है, तो होता क्या है, फाहुआ युखलिफुहु, तो क्या होता है कि बस वो जो है वो क्या करता है, युखलिफुहु, और युखलिफुहु के मानी क्या है कि वो अल्लाह जो है वो इसके इवज देगा। तो खलफा जो है, खालामफा जो है, इसके मानी क्या होते हैं, पीछे, खलीफा भी कहते हैं ना, जो पीछे आता है खलीफा बनता है नायब। तो आपके पास कुछ है और आपने दिया, उसको खर्च कर दिया, तो अल्लाह इसके पीछे जो है वो और दे देता है। वहुव खैरुर राज़िकीन, और वो जो है वो खैरू है, खैरू यहाँ पे इस्म तफ़ज़ील के मानी में नहीं है बल्कि बयान सिफ्त है, मानी क्या है कि वो जो है वो बेहतर है, बहुत अच्छा है। अर राज़िकीन, राज़िक की जमा है राज़िकीन, जो रिस्क देने वाले हैं, वो सब राज़िकों से बेहतरीन रिस्क देने वाला है। रिस्क की कमी बेशी जो है वो अल्लाह की मईशत, अल्लाह की मशीयत से ताल्लुक रखती है, मशीयत से, अल्लाह ताला की रजा से ताल्लुक नहीं रखती। तो जब अल्लाह रिस्क दे दे तो उसको अल्लाह के रास्ते में दे देना चाहिए, उसको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना चाहिए। और आप जब देते हैं और बगैर गिने देते हैं तो अल्लाह भी आपको बगैर गिने देता है। जब आप जो हैं वो कंजूस बन जाते हैं तो अल्लाह भी फिर जो है वो देने में कमी करता है। और हमें ऐसी अहदीस मिलती हैं जिससे इस बात का पता चलता है। मसलन आप देखें कि बुखारी की रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आदम के बेटे तू दूसरों पर खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा एक दफा आपके पास आई, आपने उसे कहा कि रुपया पैसा हथेली में बंद करके मत रखो, वरना अल्लाह भी तुम्हारा रिस्क बंद करके रखेगा, बल्कि जहां तक हो सके खैरात करती रहो। औरतों का हाल क्या होता है कि अपने जो पर्स वगैरह हैं, बटुए हैं, उनको जिप लगा के बंद करके रखती हैं, मौका आता है खर्च नहीं करती, गिन गिन के रखती हैं। औरतें ये ज्यादा करती हैं, मर्द भी बाज ऐसा करते हैं। तो अब क्या कहा जा रहा है कि गिन गिन के ना रखो, बल्कि उसको खोल कर दो, और अगर तुम गिन गिन के बंद करके रखोगे तो अल्लाह तुम्हारा रिस्क बंद कर देगा। फिर इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह की रवायत बड़ी खूबसूरत है, ये बुखारी की है, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह दो फरिश्ते नाजिल ना हो, इनमें एक यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बकील का माल तबाह कर दे। आप सोच लीजिए। इसी तरह ये बुखारी की रवायत है, रावी है हजरत अंस रजी अल्लाह नो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये बात अच्छी लगे इसका रिस्क कुशादा और इसकी उम्र दराज हो, और वो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। तो जो उम्र ज्यादा चाहता है, जो चाहता है उसको खूब रिस्क मिले, तो उसको क्या करना चाहिए कि अल्लाह की राह में देना चाहिए। तो आयत का ये हिस्सा क्या बता रहा है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहू, मानी ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से रिस्क ज्यादा आता है। सदका खैरात करने वालों के लिए खुशखबरी सुनाई जा रही है कि जब अल्लाह की रजा में दोगे खुलूस नियत के साथ और अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर जो है वो तुम्हें अता करेगा, क्योंकि हकीकी राजिक तो अल्लाह है। और इसको आप यूं भी याद रख सकती हैं कि मसलन आप देखें कि आप जो हैं आप कुआं खोदती हैं, और कुएं से जितना पानी निकालती जाती हैं उतना पानी आता चला जाता है। जब कुएं से पानी इस्तेमाल न किया जाए तो कुआं सड़ जाता है, फिर उसमें पानी जो है वो नहीं आता, बंद हो जाता है ना। फिर आप देखें कि आपने जो है वो टैप खोला, आप नल खोलती हैं, आप नल खोलती हैं, आप पानी लेती हैं और पानी आता चला जाता है, और अगर आप उसको बंद कर दें जंग लग जाता है, खराब हो जाता है ना। तो असल बात क्या है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में देता चला जाता है तो अल्लाह भी अपने खजाना गैब से उसका बदल देता चला जाता है। आप में से वो लोग, उनको इस बात का तजुर्बा हुआ होगा, आपके पास कपड़े हैं, बर्तन हैं, आपके पास घर के इस्तेमाल करने की चीजें हैं, और कुछ देने वाले दायां बायां नहीं देखते, देते चले जाते हैं। जो कोई आता है उसके घर में, मेहमान आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, जिसको जरूरत महसूस होती है देते हैं। और आप देखें, आपको कई दफा तजुर्बा हुआ होगा कि इधर आपने दिया और उससे भी अच्छी चीज आपके पास आ गई और फौरन आ गई, है ना। तो असल बात जो है वो क्या है कि खर्च के मुताबिक अल्लाह दुनिया में बदल देता चला जाता है, और जिसका खर्च, जो खर्च कम करता है तो उसकी पैदावार भी घटा देता है। बाज लोगों की थोड़ी जमीन होती है, उसकी पैदावार बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा देते हैं दूसरों को, दूसरे उनको दुआ देते हैं। तो असल बात फिर क्या है कि जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं तो उसको अल्लाह के रास्ते में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए, वो माल हो या औलाद। वह हुआ खैरुर राज़िकीन, और वो है सब राज़िकों से बेहतर रिज़्क देने वाला। तो ये जो आयतें हैं ये हमें क्या असूल देती हैं, ये सारी आयतें जो हैं वो तौहीद इख्तियार करने का असूल देती हैं, शिर्क की नफी करती हैं, और नंबर दो जो है वो झूठे जो माबूद हैं वो सिफारशी नहीं हो सकते। नंबर तीन क्या है कि आखिरत की तैयारी, और आखिरत की तैयारी में माल और औलाद की कसरत काम नहीं आएगी, ईमान और अमले सवाले, और ईमान और अमले सवाले के नतीजे में बड़े खूबसूरत जो है वो अल्लाह ताला दर्जात अता करेंगे। अमन और सुकून की जगह अल्लाह के पास है और वो जन्नत है। दुनिया में तो छिन जाने का डर रहता है ना, लेकिन अल्लाह के हाँ मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।